आज जिन पार्ट पर हम बातचीत करने जा रहे हैं यह हमारे व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप यह जरूर जानें कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में केवल शब्दों से ही बात नहीं बनती, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए बहुत सारे आंकड़े आपको प्रस्तुत करना हो, तो उन्हें शब्दों में हम अगर प्रस्तुत करते हैं तो उचित नहीं लगेगा। तो इसीलिए आज जो पहले बातचीत हम करने जा रहे हैं वह है तालिका आरेख निर्माण आदि प्रस्तुति के अनेक तरीके। आपने अन्य विषय भी पढ़ा होगा, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, विज्ञान और पत्र पत्रिकाएं भी देखते होंगे, तो उसमें बहुत सी तालिकाएं आपको नजर आती होंगी या आरेख नजर आते होंगे। तो आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि आखिर इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि विषय को अधिक स्पष्ट रूप से समझने और समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की ये प्रस्तुतियां की जाती हैं। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य पहले हम देख लेते हैं। पहला है तालिका आरेख आदि का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा है विवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की तालिका, आरेख, पाई चार्ट, प्रवाह चार्ट, वृक्ष आरेख, मानचित्र आदि का निर्माण कर सकेंगे। तीसरा है विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों को भाषाई कौशलों में परिवर्तित कर सकेंगे। और चौथा है विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। अब इस उद्देश्य से आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में प्रस्तुतिकरण के विभिन्न तरीकों को बताया जाएगा। तो मुख्य रूप से सात तरीकों पर हम बातचीत करेंगे। तालिका, वृत्तीय चित्र, वृक्ष आरेख, प्रवाह चार्ट, ग्राफ या बार चित्र, सामूहिक बार चित्र और मानचित्र। इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि यह चित्रों की बात है तो यह दिखाकर ज्यादा समझ में आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आसान शब्दों में आपको इनके बारे में जानकारी दूं, ताकि आप जब अध्ययन सामग्री पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न चित्रों के माध्यम से इन्हें समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तालिकाओं के बारे में। किसी विषय को ठीक से समझने समझाने के लिए, जैसा मैंने बताया कि चित्रों, संकेतों आदि का प्रयोग हम करते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी बात को किसी भी प्रकार के तरीके अपनाकर दूसरे तक पहुंचाएं, और हमारी सफलता भी इसी में है कि पढ़ने वाला दी गई बात को ठीक प्रकार से समझे और व्यक्त कर पाए। जैसे अगर इस कार्यक्रम में मैं आपको अगर कुछ बता रहा हूं और उसे आप पुनः अभिव्यक्त नहीं कर सकें तो मेरा बताना सार्थक नहीं होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे चित्र आ गए, बहुत सारे आंकड़े आ गए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, आप बाजार जाएं और एक दर्जन केले, दो किलो आलू, आधा किलो चीनी, एक चाय का डब्बा, पांच किलो आटा लेकर आए। अब आपसे कहा जाए कि आप क्या क्या लेकर आए हैं इसे बताइए। अगर ऐसे शब्दों में बताएंगे तो उचित नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने एक तालिका बना दी जिसमें पहले सामान लिख दिया और दूसरी तरफ मात्रा लिख दी, तो आसानी से किसी को भी समझ में आ जाएगा कि आपने कौन कौन से सामान लिए और कितनी मात्रा में लिए। एक और उदाहरण आपको देता हूं। आप प्रतिदिन घर में लगा हुआ कैलेंडर देखते होंगे, यह भी एक प्रकार की तालिका है, इसमें आप ध्यान दें तो इसमें एक तरफ दिनों के नाम होते हैं और दूसरी ओर दिन की संख्या या तारीख लिखी होती है। तो यह तालिका प्रस्तुत करने का तरीका है जिसे आप जरूर सीखें। आपकी सामग्री में एक उदाहरण दिया गया है कि कठिन पर जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, पुरुष और महिलाएं, उनको अनाज में कितनी चीजें दी जानी चाहिए, बच्चों को कितना दिया जाना चाहिए, बच्चों में लड़कों को कितना, लड़कियों को कितना। तो उसमें मान लीजिए आपको अलग अलग संख्याएं बताई गई हैं, तो इसको आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो इसके लिए आप बाईं तरफ लिखेंगे खाद्य पदार्थ, जिसमें अनाज, दालें, पत्तेदार सब्जियां, दूध, तेल, घी, चीनी, ये सारी सामग्री आपने लिख ली। और दाहिनी तरफ आप ऊपर की तरफ वयस्क पुरुष, वयस्क स्त्री, बच्चे, लड़का और लड़की, इस तरह से खाने बना लेंगे। उसके बाद उन खानों में आप भरते चले जाएंगे कि कितनी कितनी मात्रा या पौष्टिक आहार सबको दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर आप तालिका निर्माण करते हैं तो इतनी सारी जो जानकारी है उसे आप एक चित्र के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे तालिका का अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें व्यक्ति की प्रतिदिन की खाद्य सामग्री की मात्रा का ग्राम में विवरण दर्शाया गया है और यह वर्गीकरण प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता के अनुरूप है। जैसे आप जानते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में विटामिन ए, बी, सी, डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और अन्य तत्व होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो उसी तरह से इस तालिका को तैयार किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जब आप दो तरफ अगर चित्र बनाकर और अपनी बात को स्पष्ट करते हैं तो वहां पे आप तालिका का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। एक तरफ आप खाद्य सामग्री का जैसे यहाँ विवरण दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी मात्राओं का विवरण दे रहे हैं, कैलेंडर का जैसे मैंने बताया। तो आप ध्यान रखें कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल में आपको क्या लेकर जाना है ना, और परपेंडिकुलर में क्या लेकर रखना है आपको पहले से तय कर लीजिए। उसी तरह से दूसरा वृत्तीय चित्र होता है। विद्यार्थियों, वृत्तीय चित्र अध्ययन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक माध्यम है। सामान्य तौर से इसका लोग अनुसंधान में प्रयोग करते हैं या किसी अध्ययन के परिणाम को जानने के लिए। इस प्रकार के चित्र विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए काम में लाए जाते हैं। इसको भी एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 600 विज्ञान पढ़ते हैं, 200 कला, 200 कॉमर्स, और इसको आपको वृत्तीय चित्र के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पे आपको अध्ययन सामग्री में दिखाया गया है कि एक गोल चित्र बनाया गया और उसमें 20% 20% और 60% तीन भागों में उसे बांट दिया गया। तो यहाँ आप आसानी से वृत्तीय चित्र के माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। इससे जुड़ा एक वैन आरेख या वैन डायग्राम भी होता है, इसके द्वारा भी हम सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आपको बताना है कि चार फलों के बारे में, केला, सेब, अनार और अंगूर, और वैन डायग्राम में आपको इसे दर्शाना है। तो आप एक बड़ा वृत्त बनाएंगे, उसमें छोटे छोटे चार वृत्त बना के उसको आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रीजनिंग में पूछा जाता है कि कुछ भारतीय चित्रकार हैं, कुछ चित्रकार मूर्तिकार हैं, तो फिर उसके बाद कहा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब इस तरह का जो एक माइंड चित्र बना होता है, वृत्त चित्र, उसको समझने की आपको जरूरत होती है कि अगर तीन वृत्त बने हैं तो तीनों में कॉमन कौन सा है, वो आपको निकालना पड़ता है, या दो में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं वो आपको जानना चाहिए। तो वृत्त चित्र बड़ा ही उपयोगी होता है और इसका भी आप अभ्यास करें। इसके बाद हम आते हैं वृक्ष आरेख, यह भी एक प्रमुख विधि है। जैसे वृक्ष में शाखाएं और प्रशाखाएं निकलती हैं, उसी तरह से वृक्ष आरेख में भी हम शाखाओं का प्रयोग करते हैं। आप इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बताना है कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो वृक्ष आरेख के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं कि भाषा के चार कौशल होते हैं। आपने ऊपर भाषा कौशल लिखा, उसके बाद उसको चार खंडों में विभाजित किया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको हिंदी भाषा का विकास बताना है। इतिहास के बारे में पहले हमने पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हिंदी भाषा का विकास लिखेंगे, उसको दो भागों में बांटेंगे, काव्य और गद्य। काव्य को फिर चार भागों में बांटेंगे, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। फिर गद्य को अलग चार भागों में बांटेंगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। रीति काल के तीन खंड होते हैं, तो तीन भागों में बांटेंगे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। फिर भक्ति काल की दो धाराएं चली, तो दो भागों में बांटेंगे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को दो भाग में पुनः बांटेंगे, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण भक्ति को दो भागों में बांटेंगे, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ आप अपने एक वृक्ष के माध्यम से आपने पूरे भाषा के विकास को बता दिया। आजकल कॉन्सेप्ट मैप की बात की जा रही है या माइंड मैप की बात की जा रही है, और हम कोशिश भी करते हैं, कई पाठों में आपको हमने दिखाया भी है कि किस तरह से वृक्ष आरेख के माध्यम से आप आसानी से पूरे पाठ को समझ सकते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है। इसमें आपको, अगर आपने पूरे पाठ को पढ़ लिया और उसको दोहराना चाहते हैं, तो वृक्ष आरेख बनाकर आसानी से दोहरा सकते हैं। और कई बच्चे परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए वृक्ष आरेख बनाकर इसका प्रयोग भी करते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है प्रवाह चार्ट, जिसको इंग्लिश में फ्लो चार्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग काफी होता है। मान लीजिए कोई चीज एक क्रम में चल रही हो, तो उसको प्रवाह चार्ट से प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे जाना हो और आपको तीन चार जगहों पे बदल के, गाड़ी बदल के, वाहन बदल के अलग जगह पे पहुंचना हो, तो इसको आप आसानी से प्रवाह चार्ट से बता सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, अगर आपको मान लीजिए दिल्ली से जाना है वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, तो आप प्रवाह चार्ट बनाएंगे कि आप घर से रेलवे स्टेशन जाएंगे, फिर दूसरा एरो बनाएंगे कि रेलवे स्टेशन से जम्मू जाएंगे, फिर चार्ट बनाएंगे कि वहां से कटरा जाएंगे, फिर चार्ट बनाएंगे कि वहां मंदिर दर्शन करेंगे, फिर वापस लौटेंगे, फिर वहां से कटरा आएंगे, कटरा से जम्मू आएंगे, जम्मू से फिर दिल्ली आएंगे, फिर वहां से घर आएंगे स्टेशन से। तो ये पूरा एक चार्ट बन गया। तो इसका प्रयोग दैनिक जीवन में भी बहुत लोग करते हैं। तो प्रवाह चार्ट का भी आप जगह जगह प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण है ग्राफ या बार चित्र। इसमें संख्याओं या आंकड़ों में आए परिवर्तन को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वे एक नजर में स्पष्ट हो जाते हैं। इन चित्रों में आयत के आधार पर एक समानता रहती है लंबाइयों में, और इसमें आपको उदाहरण भी दिया गया है आपके अध्ययन सामग्री में कि मान लीजिए कि आपको कई राज्यों के जनसंख्या का विवरण देना है तो आप कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो आप बाईं तरफ राज्य के नाम लिखेंगे और दाहिनी तरफ संख्या लिखेंगे, तो इस तरह से आप आसानी से अलग अलग राज्यों की जनसंख्या को ग्राफ बार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से सामूहिक बार चित्र भी होता है। सामूहिक बार चित्र में मान लीजिए आपको कहा गया कि विभिन्न वर्षों में पुरुष और महिला की के प्रतिशत को बताएं, तो इसमें आप कैसे बताएंगे। आप सबसे पहले बाई तरफ वर्ष लिख लेंगे और एक कॉलम पुरुष का और एक कॉलम महिला का बना लेंगे, और इस प्रकार आसानी से आप सामूहिक बार चित्र बना सकते हैं। और मैथमेटिक्स में आप लोग बार चित्र बनाते होंगे ग्राफ पेपर पे, वो भी बड़ा ही उपयोगी है। इसके बाद एक आता है मानचित्र। आप लोग सभी जानते हैं मानचित्र के बारे में। मानचित्र का प्रयोग भूगोल में सबसे ज्यादा किया जाता है। वहां पे संख्याओं को विभिन्न रंगों और बिंदुओं से दर्शाया जाता है, या उस स्थान पर संख्या को रख के भी दर्शाया जाता है। तो मानचित्र जो है मैप बनाना, ये भी विद्यार्थियों को सीखना चाहिए। उससे आप बहुत सी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे आपको अगर दिया गया है कि भारत की नदियों को आप मानचित्र पर दर्शाएं, तो आपको अलग अलग नदियों का जो लोकेशन है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्वरूप होता है अपनी बात को प्रस्तुत करने का। तो अगर इसको जो हमने सात तरीके बताए, इसको अगर हम संक्षेप में देखें, तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन सामग्री को हम शब्दों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार से भी समझते हैं, जैसे तालिका, आरेख, पाई चार्ट, प्रवाह चार्ट, वृक्ष आरेख, बार ग्राफ, मानचित्र आदि। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई कि विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण से अध्ययन सामग्री को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, और उसे हम अपने स्मृति पटल पर बहुत देर तक संजोकर रख सकते हैं, क्योंकि जो बातें शब्द नहीं कह सकते चित्रों के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। समाचार पत्रों में आप देखते होंगे कि बहुत से जगहों पे छोटा चित्र होता है, वो पूरी कहानी बता देता है। खासतौर से मुख्य पृष्ठ पर आप देखेंगे कि प्रतिदिन समाचार पत्र 3-4 चित्रों को देते हैं, तो बहुत सी बातें लिखने की जरूरत नहीं होती है, चित्र अपने आप बता देते हैं। इसके अलावा तालिका के बारे में यह बात निकल कर आई कि वह विषय के अनुरूप होता है और सरल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। पाई चार्ट बनाते समय आंकड़ों को प्रतिशत में अगर बदल लें तो वह आसान हो जाता है, और पाई चार्ट का पूरा एक जो गोला होता है वो 100% को दर्शाता है। वृक्ष आरेख के बारे में महत्वपूर्ण है कि इसमें वृक्ष के समान कई शाखाएं और प्रशाखाएं निकलती हैं, जिससे सामग्री को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके अलावा जो प्रवाह चार्ट है, प्रवाह चार्ट में एक कार्य संपन्न होने पर दूसरा प्रारंभ होता है, या यात्रा का जैसे मैंने वर्णन किया कि एक जगह से दूसरी जगह आप जब जाते हैं तो प्रवाह चार्ट के माध्यम से उसको आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। वैन डायग्राम के बारे में भी मैंने बताया, उसमें वृत्तों का प्रयोग करके तथ्यों को दर्शाया जाता है। और ग्राफ चित्र में आंकड़ों वाली जो सामग्री होती है उसे दर्शाया जाता है। तो इस तरह से हमने जो विभिन्न तरीके सीखे हैं, इन तरीकों का आप प्रयोग करें और आपके प्रश्न पत्र में भी 5 अंक का एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको इसे बनाने के लिए दिया जाएगा। आप पाठांत प्रश्न देखेंगे तो उसमें पाई चार्ट भी बताया गया है और ग्राफ पर भी प्रश्न दिए गए हैं। उसको आप हल करें और निश्चित रूप से आप पारंगत हो जाएंगे इसका अभ्यास करके। तो मैंने संक्षेप में इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा और आप अध्ययन सामग्री को पढ़ें और जिस तरह से चित्र बनाए गए हैं अध्ययन सामग्री में उनको देखकर आप अभ्यास भी करें।